بات میں سوال ہے کہ شمسیت برجا چارین پرسن جب آپ نند گاؤں سے گایوں کو لے کر پرسنوں کو لے کر آگے برج میں برندابن میں بن میں برج کہتے ہیں گاؤں کو, برج سے جب بن میں پرویش کرتے ہیں شمسیت جس سمے آپ نند گاؤں سے گایوں کو لے کر بنوں میں برندابن میں پرویش کرتے ہیں नलिन सुंदरम नाथते पदम, आप अपने सुकुमार कोमल चरणों के साथ गायों को आगे करके पीछे पीछे चलते हैं। हमें ऐसा लगता है हम घर पर बैठी रहती हैं कि आपके चरणों में अवश्य व्यथा सुख होते होंगे, सुख होता होगा। सिला पत्थर आप आज आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, भगवान ऐसे ही चलते थे, वो बिना जूता के ही चलते थे। तो गोपियां कहते तिल तिल अंकुर, तिल आप आ रहे थे तो कांटा पड़ा था ना झाड़ियां, उस पर आपके पैर पड़ते होंगे। जब यह विचार करके दिन की बात, जब गाय के गोचारण के लिए चलते हैं तो हमें तकलीफ होता, हमारा मन कलीलता को प्राप्त कर हमारा हृदय पिघल जाता है, सुखी हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। और आज तो दिन की बात नहीं, आप रात्रि में कहीं जंगल में घूम रहे हैं, रात पीड़ा रात्रि के समय हुई थी, यही भगवान की रात स्थलियां हैं। इन सभी जगहों पर ब्रज के द्वादश काननों में भगवान ने रात क्रिया किया और रात लीला रात्रि के समय होती थी। तो दिन के समय आप वन से निकलते हैं तो उस समय हमारा हृदय दुखी होता है, मन दुखित होता है कि आपके चरणों में कांटे लग रहे होंगे, कंकर लग रहे होंगे। तो ये तो रात्रि का समय है, हम लोगों को छोड़कर जंगल में आप घूम रहे हैं। हे कृष्ण मन कांत गच्छति, इस समय तो हमारा और ही हृदय व्यतीत हो रहा है, आप कृपा करके हम लोगों से मिल जाइए। और यह गीत गोपी गीत गोपियां यमुना जी के तट पर बैठकर सामूहिक रूप से गा रही थी, यह प्रार्थना है। क्योंकि इस श्लोक में एक शब्द आया है नलिन सुंदरम नाथ से पदम, भगवान के अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत ऐश्वर्य है, तो उसमें एक गुण है भगवान बहुत सुंदर है। जितना सौंदर्य है प्रकृति में, सौंदर्य है फूलों में, सौंदर्य है मैं मृग के आंखों में भी समझा जाता है कि बहुत सौंदर्य है, स्वर्ग की कुछ स्त्रियां हैं उर्वशी आदि उनमें जो सौंदर्य है और प्रकृति में सौंदर्य, सभी सौंदर्य को इकट्ठा कर लिया जाए, जितना सौंदर्य है, जितने बड़े बड़े सुंदर लोगों का आपने नाम लिया है सबका सौंदर्य इकट्ठा कर लीजिए और कृष्ण का सौंदर्य अकेले, तो सभी सौंदर्य प्रकृति की संपूर्ण सौंदर्य, सभी व्यक्तियों के संपूर्ण सौंदर्य, कामदेव है उनका भी सौंदर्य इकट्ठा कर, यदि वह एक बूंद होगा तो कृष्ण का सौंदर्य कितना बड़ा होगा, समुद्र के बराबर होगा, कोई तुलना नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर है, इसीलिए भगवान को कोई एक बार देख लेता है, नहीं देखा है तब भक्ति है तो उसे आंखें तरसती, नेत्र में सुप्ता होती है, तरसते रहते हैं देखने के लिए। यदि कोई व्यक्ति देख लेता है तो वो और दुखी हो जाता है, नहीं देखे हैं तब तो दुखी है ही, देखने के लिए यदि देख लेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे कि मैंने क्यों देखा, क्योंकि वो देखने के बाद अंधा जैसा व्यक्ति होता, दुनिया का कोई रूप कोई रंग पसंद नहीं आता है और भगवान को देखने के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं। उन्होंने विद्यापति जी ने कहा है कि कृष्ण के विषय में नयन जन्म अवधि हम रूप निहारिनु नयन नतिरिक्त भेल, राधा रानी कहते हैं गोपियां कहते हैं कि हम जब से हमारा होश हुआ है बचपन से ही कृष्ण हम आपको देख रही हैं, परंतु अद्यावधि अभी भी मेरे हमारे नेत्र हम लोगों की आंखें तृप्ति का अनुभव नहीं करते बल्कि और तीक्ष्णा देखने की लालसा और बढ़ती बढ़ती जा रही है। वामदेव जानते हैं ना, जो प्रेम के देवता है, सबसे सुंदर व्यक्ति है, उनकी निंदा मन मत त्रोही की कहब अनेक। हे मन मत कामदेव, हम तुमको क्या कहें, कौन सा शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग करें, तुम इतना अन्याय करते हो, गलती करते हो। क्या तुमने गलती किया, इसी अपराध परान पे पीड़ती पवन विवेक। भगवान को देखने में हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे नेत्र विवश करते हैं, वो अपराध करते हैं, तुम वो देखते हैं कृष्ण को, लेकिन तुम दुख को किसको देते हो, हृदय को, मन को दुख देते हो। अपराध किसने किया, कृष्ण को किसने देखा, नेत्रों ने देखा, तो नेत्र को कुछ करना होता कोई बात हमें नहीं, लेकिन तुम दुख कुछ किसको देते हो, हमारे मन को देते हो। यह तुम्हारा कौन सा न्याय है, कौन सा विवेक है, किसी अपराध है, अपराध किसने किया, नेत्रों ने किया, नेत्र में देखते हैं भगवान को, और दुख किसको होता है, हृदय को, यह कौन करता है, कामदेव करते हैं। तो तुम्हारा कौन सा विवेक है, कौन सा न्याय है, कौन सा जस्टिस तुम कहाँ से सीखे हो, अपराध किसने दूसरा किया, गलती दूसरे ने किया, नेत्रों ने गलती किया और दुख देते हो हमारे मन, और नेत्रों ने भी गलती किया तो बहुत बड़ा गलती नहीं किया है। नाहीन नयन सुनगन वारिन परिजन बामही आप। एक गोपी कहती है कि मैं जब कृष्ण को देख रहा था तो दाहिने आंख को तो लगाया हुआ था कि हमारे जो निंदक है वे न देख ले, वो लोग देख लेंगे कि यह गोपी कृष्ण को देख रही है तो बहुत निंदा करते हैं, तो एक आंख से तो मैं उनको देख रही थी कि वे न देख ले कृष्ण को देखने। दाहिने नयन, दाहिने नयन को मैं लगाई थी कि हमारे जो निंदक है, निंदक है ना, वो न देख ले। दाहिने नयन सुनगन वारिन परिजन बामही आप, और बाया आंख लेफ्ट आईज है तो उसमें आधे से देख रहे हैं कि हमारे परिजन न देख ले, सास न देख ले, ससुर न देख ले, भाई न देख ले, और पति के भाई को क्या कहते हैं, देवर न देख ले, वो न देख ले, वो बहुत बड़ी गुस्सा करेंगे कि कृष्ण को देख रही थी। तो एक आंख तो लगा हुआ था मेरा पर निंदकों को, वो न देख ले, और आधा आधा आंख था, बाया आधा देख रहा था कि हमारे परिजन स्वजन न देख ले, और आधे नेत्र से मैंने आठ नयन कोने हरि, आधे नयन के कोने से मैंने कृष्ण को देखा, मैंने देखे। यह बहुत बड़ा अपराध हो गया आंखों का, 70% आंखों का जो साइड था वो तो देखने, आप 50% तो निंदकों को, वो न देखने, और 25% परिजन अपने स्वजन है वो न देखने, और आधे नहीं उससे भी आधा ही पूरा उसके कोने से मैंने कृष्ण को देख लिया, तो यह बहुत बड़ा हमारा अपराध हो गया। इतना दंड देते हो कि हमेशा तुम्हारा यह क्या है, पूर्वाहर पथ करत गतागत कि नहीं घेरा कान। भगवान जाते हैं, कृष्ण नंदगांव से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, और जंगल में सब लोग देखते हैं, लेकिन तुम्हारा जो बाण है, कामदेव का बाण, वो हम लोगों को ही चरा पाता है, दूसरे को कुछ नहीं करते हो। माँ यशोदा के प्रति बड़ी दयालु हो, नंद बाबा के प्रति दयालु है, तुम लोग क्या है, गोप सखा है, उनको कुछ नहीं करते हो। तुम्हारा तुम्हारा बाण है कामदेव, पांच उसके बाण है, तो हमारे हृदय की तरफ मारते हो। हम लोगों का अपराध बहुत थोड़ा है, पूर्वा हर पथ करत गतागत के नहीं हेरे कान, कौन नहीं कृष्ण को हेरता है, देखता है, लेकिन तुहर सुसुम सर कतहुन संचर हमर हृदय पांच बाण। हमारा पांचों बाण हम लोगों के साथ है। स्मृति राधा रानी गोपियां पासी है, हम यह कहना चाहते हैं कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। एक जगह विद्यापति जी ने कहा है कि जब कृष्ण के हाथों में कहीं मीरा रहता था तो राधा रानी एकदम व्यथित हो जाती थी, कृष्ण मिरर में अपना सौंदर्य देखेंगे, अपनी छवि देखेंगे, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, अपने ही प्रति आकर्षित हो जाएंगे। और कृष्ण के सामने जब वो रूप, ऐसे तो कृष्ण नहीं देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं ना, हमारे आंखों की विशेषता देखिए कि जगत जनायो यही सकल से हरि जान्यो नाही। एक कवि ने कहा, हिंदी के कवि ने कहा कि जिसकी कृपा से हम सारे जगत को देखते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान को नहीं हम देख जान पाए। सब कुछ हम जानते हैं, बहुत साइंस जानते हैं, वो जानते हैं, किसकी कृपा से जानते हैं, भगवान की कृपा से, लेकिन हम भगवान को नहीं जानते। तो उदाहरण में कहते हैं, वही कभी कहता उदाहरण, जिन आँखिन सब देखिए आँखिन देखा जाए, आँख सबको देखती है, नेत्र सबको देखते हैं, देखते हैं ना, लेकिन नेत्र अपने को नहीं देख पाते, नहीं देखते हैं ना अपना नेत्र, दूसरे के नेत्र हम देखते हैं, लेकिन हमारी हमारे जो नेत्र है, मेरी जो आँख है, वो आँख को नहीं देखते, हाथ को देखती है, नेत्र हाथ को देखते हैं, लेकिन नेत्र नहीं ना देखते हैं। आप अपने आँख को देखे हैं, मिरर में देखे होंगे, मिरर नहीं है तो अपने आँख को, अपने नेत्र को, अपने नेत्र देखते हैं कि नहीं। तो हमारा दुर्भाग्य, जगत जनायो यही सकल, भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से हम सारी दुनिया को, सबको देख रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग भगवान को नहीं जानते। सब कुछ जान जाए, जान गए उनकी कृपा से, लेकिन भगवान को नहीं जानते। ठीक वैसे ही जैसे हमारे नेत्र सबको देख, हमारे नेत्र सबको देखते हैं, यहाँ तक अपने को भी देखते हैं, हाथ को पैर को सब, लेकिन अपने को, नेत्र नेत्र को नहीं देख पाते। तो श्री कृष्ण के सामने मिरर नहीं है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है राधा रानी, लेकिन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उन राधा रानी को बड़ी चिंता होती है, तो अपने को मिरर में तो अपने मुंह को देख लेंगे, देख लेंगे तो इतने सुंदर है, उतने सुंदर है कि उस सौंदर्य के सामने हमारा सौंदर्य तो फीका पड़ जाएगा। इसलिए गोपियां श्री राधा रानी तो भी नहीं चाहती थी कि कृष्ण के हाथ में या कृष्ण मिरर के दर्पण के सामने हो। तो भगवान बहुत सुंदर है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। और सौंदर्य के साथ भगवान में सौ कुमार्ग भी है। भगवान के श्री विग्रह में सौंदर्य है और सौ कुमार सुकुमारता है, और इसके साथ एक और गुण होता है, सौरभ भी होता है। तो यहाँ पर गोपियों ने भगवान के चरणों के कहा कि नलिन सुंदरम, उपलक्षण से सौंदर्य की ही बात नहीं, एक कमल में सौरभ भी होता है, सौरभ सुगंध भी होता है, और इसके साथ सौ कुमार भी होता है। तो भगवान के चरणों में सौंदर्य है, इसके साथ क्या है तो उत्तम है, सौ कुमार है, सौ कुमार में कोमल है, सुकुमार है, और सौरभ, सौरभ मतलब कमल में होता है ना, तीनों होता है, इस कमल में तीनों गुण होते हैं, सौंदर्य होता है, सौ कुमार होता है, सौरभ होता है। आपके चरण इतने युक्त है, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान के आंखों का, नेत्रों का वर्णन एक हिंदी के कवि ने किया है, तो वह कवि ढंगा ढंग से भगवान के नेत्र का वर्णन करते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रतनार, जियत मरत झुक झुक परत यही चितवत एक बार। अर्थ है कि है कृष्ण आपके नेत्र में अमी मतलब अमृत है, कोई देख लेता है तो उसके जीवन में अमृत अमृत का संचार हो जाता है, अमी है। लेकिन इसके बाद हलाहल भी, हलाहल मतलब विष भी है, एक बार देख लेता है तो देखने की लालसा इतनी बढ़ती है कि बेचैन होता
है,
तो वो विष भी है। और मत, मत मतलब शराब, तो अमृत से संचार होता है तो जीवन में उसे संचार, अमृत का संचार हो जाता है, और एक बार देख लेता है तो जो विष है उसका प्रभाव होता है तो वो मृत्यु ही हो जाती है, और मद उसका संचार मद का जो प्रभाव होता है तो पागल जैसा विचित्र जैसा हो जाता है, तो सुविधा नहीं है। अमी हला हल मद भरे श्याम श्वेत रतना जियत मरत झुक झुक मरत यही एक बार, जो नहीं देखा है तो वो तो कुछ सेफ है भी, लेकिन कहीं देख लिया तो उसका दुख अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है, वैसे सुख भी अनंत अनंत गुना बढ़ जाता है। तो भगवान बहुत सुंदर है, उपलक्षण से वहां पर नलिन सुंदरम नाथ से बदन, वहां तो शब्द तो गोपियों ने सौंदर्य का ही किया, लेकिन जब नलिन तो उसे अर्थ यह भी लेना चाहिए सौ कुमार और सौरभ भी, भगवान बहुत सुंदर है। तो भगवान उस कुमार चरणों से दिन के समय जाते हैं तब भी बड़ी संकट की बात है, लेकिन रात्रि के समय मध्य रात्रि में भगवान की जो रास लीला हुई होती है तो रात्रि के समय होती है, और रात्रि में भगवान यहाँ पर नृत्य करते हैं। आज आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, गोपियां यह कहती हैं कि न रोज गाते हैं ना कि आपके चरणों में शिला तीर्ण पौधे है ना, कंटीले पौधे हैं, फूल के पौधे छोटे छोटे देखे ना, नृत्य कर रहे नीचे देख रहे थे कहीं छोटे से फूल के पेड़ के पौधे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। और अभी अभी पेड़ है, इसमें भी कम काटे नहीं है, चारों तरफ छोटे छोटे हम लोग का व्यतीत हो रहा है कृष्ण, इसलिए आप हम लोगों को छोड़कर आप चले गए हैं, आप यमुना जी के पुलिन पर आप आ जाए। मैं एक और श्लोक कहना चाहता था, ऐसे सनातन गोस्वामी गोपी गीत की टीका के क्रम में लिखे हैं, हमने भी चर्चा किए थे, गोपियों ने जो गीत गाया है गोपी गीत गाया है तो गाया है गोपियों ने, और किसके लिए गाया है, कृष्ण के लिए। तो गोपियां इसका पूरा पूरा अर्थ समझती होंगी, वो तो क्या कहना चाहती हैं वो जानती हैं, और जिसके लिए कह रही हैं गा रही हैं कृष्ण जानते हैं उसका अर्थ पूरा पूरा, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। या तो इस गोपी गीत का समुचित अर्थ गोपियां जानती हैं उन्होंने गाया है, अथवा जिसके लिए उन्होंने गाया है वो तो कृष्ण जानते हैं। दो व्यक्ति दो पार्ट, तीसरा व्यक्ति सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कुछ कुछ समझ सकते हैं श्रीधर स्वामी, जो श्रीमद भागवतम के अन्यतम टीकाकार हैं, जिस टीकाकार को चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रशंसा प्राप्त है श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की ही कृपा से इसका कुछ अर्थ है श्रीधर स्वामी जानते हैं, और श्रीधर स्वामी जब उस आस्वादन कर रहे थे टीका लिख रहे थे चरवण कर रहे थे कुछ उच्छिष्ट बच गया गिर गया फैल गया, तो श्रीधर स्वामी की कृपा से और गोपियों की कृपा से हम लोग भी थोड़ा समझते हैं, गोपियों की कृपा के बिना इसका अर्थ नहीं समझा सकता, कृष्ण की कृपा के बिना इसका अर्थ नहीं समझा, और इसके बाद श्रीधर स्वामी जब तक सहायता न करें तब तक इसका अर्थ नहीं समझा जा सकता, ये सनातन गोस्वामी कहते हैं, जीव गोस्वामी जैसा कहते हैं। तो जब श्रीधर स्वामी चरवण कर रहे थे तो कुछ अवशिष्ट गिर पड़ा, तो हमको भी थोड़ा मिल गया गोपियों की कृपा से, भगवान की कृपा से, श्रीधर स्वामी की कृपा से, तो मैं भी दुस्साहस कर रहा हूँ, अधिकार नहीं है इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए गोपियों का किताब, लेकिन अब दुस्साहस समझते है ना, अंग्रेजी में दुस्साहस को क्या कहते हैं, मतलब कि वो डेयरिंग में डेयर कर रहा हूँ, डेयरिंग कर रहा हूँ, तो बहुत से अर्थ है, तो हम एक श्लोक का अर्थ कहते हैं, चौथा श्लोक, ये बहुत से श्लोक है, अच्छा होता है कि सभी श्लोकों का हम लोग अर्थ पढ़ते, उतना समय नहीं है। चौथा श्लोक आप जानते हैं ना, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विघन सारितो विश्व भूतये सखव देवा सात्वताम कुले। चौथा श्लोक है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, हे कृष्ण आप केवल माँ यशोदा के, माता यशोदा के, गोपिका के पुत्र मात्र नहीं है। पुत्र तो है ही, इस अवतार लिए हैं, लेकिन केवल पुत्र नहीं है। आप केवल माँ यशोदा के पुत्र नहीं है, तो क्या है? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं। अखिल देहि नाम, जितने देही हैं, प्राणी हैं, सबके हृदय में आप परमात्मा रूप से निवास करते हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप भगवान हैं। विखनसा अर्थित, विखनसा विखनसा मतलब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, किया है। तो सख हे हम लोगों के मित्र, सख उदयवान सात्वताम कुले, आप भगवान हैं। केवल नंद नंदन, यशोदा नंदन ही नहीं है, यहाँ ब्रज में लीला करते हैं, परंतु आप भगवान हैं, स्वयं भगवान है, परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना किया था, इसलिए सख उदयवान सात्वताम कुले। विखनसा अर्थित, अर्थित ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना किया था, विश्व भूप से विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के भलाई के लिए, विश्व के पोषण के लिए, विश्व के प्रोटेक्शन के लिए आप सात्वताम कुले यदुवंश में आप अवतार लिए हैं। गोपिया यह कहते हैं कि हम लोगों के हृदय में जो दुख है, आपके लिए जानना असंभव नहीं है। सभी प्राणियों के हृदय, हमारे भी हृदय में आप हैं, तो आप जान सकते हैं। आप केवल माँ यशोदा के पुत्र होते, नंद नंदन होते, गोप बालक होते, तो हो सकता है नहीं जान सकते थे, लेकिन आप सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, तो स्वाभाविक हमारे हृदय में भी आपकी स्थिति है, तो अवश्य ही आपको ज्ञात होगा कि हम लोग कितने दुखी हैं। हम लोगों के दुख को दूर कर दीजिए, और हमारा दुख इसी से मात्र इतना ही से दूर हो जाएगा कि आप हमारे सामने, हमारे दृष्टि पथ पर आ जाए, हमको दिख जाए, हमसे मिल जाए। यह तो सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह भी है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, गोपियां भगवान को उलाहना देती है कि आप, हम लोग आज निश्चित कह सकती हैं, हमको विश्वास हो गया कि आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। न खलु गोपिका नंदना भवान, निश्चित रूप से आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं ही हो सकते हैं। माँ यशोदा का पुत्र नहीं, उसमें क्या है? कहते हैं कि माँ यशोदा का हृदय इतना सभ्य कोमल है, माँ यशोदा किसी को दुखी देख भी नहीं सकती थी। उनका लड़का इतना कठोर हृदय का कैसे हो सकता है? माँ इतना सॉफ्ट हार्टेड है, कोमल हृदय की है, तो यदि आप यशोदा जी के पुत्र होते तो इतनी कठोरता आप नहीं करते। हम स्त्रियां हैं, अबलाए हैं, जंगल में, घोर जंगल में बिलख रही हैं, रो रही हैं, और आप घूम रहे हो, तो आप, हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं ही हैं। गोपियों ने नंद बाबा का नाम क्यों नहीं लिया? कह सकती थी कि आप नंद बाबा के पुत्र नहीं है, यशोदा का नाम क्यों लिया? प्रशंसा है ना, नंद बाबा भी तो कोमल हृदय के थे, वो भी किसी का दुख देख नहीं सकते थे। आप लोग जानते होंगे, जो जब कोई पुत्र पैदा होता है किसी दंपति, पति पत्नी से पुत्र तथा पुत्री उत्पन्न होती है, तो पिता का जो गुण होता है, पिता की जो संस्कृति होती है, पिता का जो स्वभाव होता है, वो पुत्री में ज्यादा होता है। दोनों में होता है, पुत्र में भी होता है, पुत्री में भी होता है, लेकिन पिता का जो अधिकांश उसका स्वभाव है, उसकी संस्कृति है, उसका संस्कार है। पुत्र का संस्कार ज्यादा पुत्री में होता है। यहाँ तक कि चेहरे का बनावट और रंग रूप भी पुत्री में पिता के अनुकूल होता है। वाणी भी बोलने की जो समानता होती है तो ज्यादा मिलता जुलता पिता से पुत्री का, और पुत्र में माँ की संस्कृति, माँ का संस्कार, माँ का गुण आता है। तो स्वाभाविक समझा जाता है कि जो माँ यशोदा में गुण था, नंद बाबा का भी गुण कृष्ण में था, माँ यशोदा का भी था, लेकिन ज्यादा किसका था? माँ यशोदा का। इसलिए नंद बाबा का उन्होंने नाम नहीं लिया। वो कहते कि न खलु गोपिका नंदनु भवान, आप इतनी कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, इतना हार्ड आपका हृदय है, हम अबलाए हैं, स्त्रियां हैं, हर स्त्री पर बच्चों पर साधारण व्यक्ति भी दया करता है। यदि आप यशोदा के पुत्र होते तो हमारे सुख को आप नहीं ही सहन कर सकते। इसलिए हम आज कह सकती हैं, गर्गाचार्य इत्यादि कहते थे कि बस वसुदेव जी के यहाँ, देवकी जी यहाँ के, निश्चित रूप से आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं है। न खलु गोपिका नंदन भवान, आप माँ यशोदा के पुत्र नहीं है, आप परमात्मा है। परमात्मा जानते हैं ना, परमात्मा हृदय में रहते हैं, इतना उसको कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग कितना दुखी और चैन से वहां रहते हैं, तो आज सच में आज परमात्मा ही है। परमात्मा जानते हैं ना, असपर हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा क्या हमारी सहायता कर, यह एकदम नजदीक से है। और सब लोग दुखी है, द्वंद है, रोग है, व्यथा है, वो तो चुपचाप ऐसा न्यूट्रल होकर बैठे हैं। तो आप यशोदा के पुत्र वही परमात्मा हो, तो कुछ असर ही नहीं पड़ता है। हम लोग का हृदय तुझे क्या परमात्मा करते हैं, चुपचाप बैठे देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो ठीक है, आप परमात्मा भगवान क्या कहते हैं, यशोदा के पुत्र नहीं। और विखनसार परमात्मा है, उन्होंने भगवान है, आपसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप यहाँ पर अवतार लिए। इसमें भी एक आक्षेप है, उलाहना है, लिए हो विश्व गुप्त है, ब्रह्मा जी की अवतार तो ले लिए, लेकिन कुछ काम तो नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था संसार के, दुनिया के रक्षा के लिए, विश्व गुप्त है, सबके कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, और आप क्या कर, हम आपकी अपनी गोपियां हैं, परिवार की हैं, निकटतम समझ, हम लोगों की आप सहायता नहीं करते हो तो दुनिया को क्या सहायता करोगे आप? परमात्मा हो और ऐसे कुछ विशेष लाभ नहीं। नखल गोपिका नंदनो भवान अपिन देहिनाम अंतरात्म दे विखल सारथी तो विश्व गुप्त है सख उदयवान शाश्वताम खुले। आप शाश्वताम खुले से तो वंश में अवतार हुआ है, सतदेव जी के यहाँ जन्म हुआ है। शाश्वत कुल मतलब वह कहा जाता है, जदुवंश भी जदुवंश है, वह है जो वसुदेव जी का परिवार है, मथुरा का और द्वारिका का परिवार, वहां जन्म लिए हो आप, माँ से सोदा के पुत्र नहीं ही हो। बहुत से श्लोक है तो चर्चा के और हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे थे, तीन बंधु प्रभु आने वाले हैं, तो हमें इसलिए भी थोड़ा ज्यादा आप लोग का समय ले रहे थे कि